बगिया में खिले फूलों से ही मौसम में बसंत बहार है। बगिया में खिले फूलों से ही मौसम में बसंत बहार है। आप सभी महानुभावों के सभा में होने से ही इस सभा में उड़ती फुहार है, इस सभा में उड़ती फुहार है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मंचासीन आदरणीय राजपाल सिंह जी, नंदा बहन जी, आज का जो ये विषय है जिसको कहा गया स्पिरिचुअलिटी रूल्स एंड सेफ्टी टूल्स, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। जो नंदा बहन जी ने कहा, मैं प्रोफेसर हूं, कॉलेज में पढ़ाता हूं, लेक्चर्स देता हूं, ये तो सिर्फ 5% मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है। 95% ऑफ माई इंट्रोडक्शन आई टेल यू माई सेल्फ, कि मेरा सत्य परिचय क्या है। मेरे जैसे एक प्रोफेसर एक बार ऐसी बड़ी भरी सभा को एड्रेस कर रहे होते हैं स्कूल कॉलेज में, और लेते लेते अचानक वो बच्चों से पूछते हैं, क्या बता सकते हैं कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, माँ या एक प्रोफेसर? हु इज ग्रेट, अ मदर और अ प्रोफेसर? बाई डिफॉल्ट कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, माँ है या प्रोफेसर? कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? इट वॉज एन ऑब्वियस आंसर कि माँ ही बाई डिफॉल्ट ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन ये प्रोफेसर चाहता था कि कोई खड़ा होकर कहे तो प्रोफेसर इज ग्रेट, क्योंकि भाई इतना मेहनत करता है प्रोफेसर, बच्चों का करियर बनाता है, लाइफ बनाता है, उनको नौकरी दिलवाता है, बहुत सारी बातें हैं। तो एक विद्यार्थी खड़ा होकर हाथ ऊपर उठाता है, कहता है, सर कैन आई रिप्लाई? तो ये प्रोफेसर गोज अक्रॉस टू दिस यंग मैन एंड सेज, या आप बताइए। बोला, सर बाई डिफॉल्ट प्रोफेसर इज ग्रेट। बाप रे, ये बात सुनकर ये प्रोफेसर बहुत गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है इस बात को सोचकर कि एटलीस्ट एक विद्यार्थी तो है जो उसके समान सोचता है कि भाई प्रोफेसर मां से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इतना खुश होकर के वो इस विद्यार्थी को पूछता है, कैन यू टेल मी व्हाई ऑन अर्थ इज अ प्रोफेसर ग्रेट देन अ मदर? किस कारण से एक प्रोफेसर मां से भी ज्यादा श्रेष्ठ है? तो वो विद्यार्थी कहता है, सर जब मां लोरी सुनाती है तो दो को सुलाती है, और जब हमारे प्रोफेसर साहब शुरू करते हैं पूरा का पूरा क्लास हो जाता है। सर तो कौन ज्यादा श्रेष्ठ हुआ, मां ज्यादा श्रेष्ठ हुआ या प्रोफेसर ज्यादा श्रेष्ठ हुआ? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले आधा एक घंटे में मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह सुलाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आई एम अ प्रोफेसर, मेरा काम ही सुलाने का होता है। ठीक है, कहते हैं, कैन आई हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? वैसे तो कल हमने गणेश चतुर्थी मनाया, आप तो यहां पर थे, इतने अच्छे। इफ यू कैन रीड दिस, इट सेज, केयर फॉर योर हेड, नॉट एवरीवन गेट्स अ रिप्लेसमेंट, वेयर अ हेलमेट। गणपति जी को शायद ये वरदान था कि उनका असली सिर जाने के बाद रिप्लेसमेंट में हाथी का सिर मिल गया था, वो तो शिव जी की कृपा थी। प्रॉबेबली यू एंड आई मे नॉट बी एज लकी एज गणेश जी कि वी विल गेट अ डिफरेंट हेड। आज का ये जो सत्र है इसमें हम बहुत सारी बातों को देखने का प्रयास करेंगे। मेनली इसको हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, हमारा स्थूल यात्रा जिसमें हमें बहुत सारे सिद्धांतों का, नियमों का, आयामों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जीवन रूपी यात्रा में ऐसे कौन से स्पिरिचुअलिटी के रूल्स हैं जिसको हम धारण करने से शायद वहां भी हमारे एक्सीडेंट कम हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ब्रदर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, सेफ्टी टूल्स एंड स्पिरिचुअलिटी रूल्स, या नेक्स्ट स्लाइड। इट सेज, इट इज व्हेन वी ऑल प्ले सेफ दैट वी क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ अटमोस्ट इनसिक्योरिटी। दिस वॉज स्टेटेड बाई फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमर्सकोल्ड। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश। लेकिन उनका यह मानना था कि अगर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सिक्योरिटी के सिद्धांतों को, सेफ्टी के सिद्धांतों को, सुरक्षा के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करेगा, बाय डिफॉल्ट इनसिक्योरिटी अर्थात वो ऐसे अपने आप एक दुनिया बन जाएगी जिसमें हमको सिक्योरिटी के सिद्धांतों को पालन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहते हैं देयर आर सो मेनी इनक्योरेबल डिजीजेस। इनक्योरेबल मतलब जिसके पास आज भी मनुष्य के पास उसका एंटीडोट नहीं है, उसको ठीक करने का मनुष्य के पास कोई तकनीक नहीं है। इनक्योरेबल, उसका क्योर, उसका इलाज अंदर है। सिक्योरिटी भी शायद हमें इनसिक्योरिटी के आधार पर हमें उसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। वैसे तो कहते हैं जीवन में अनेक प्रकार की हम यात्राएं करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई जैसे आप यहां पर माउंट आबू आए अपने क्षेत्रों से आए, कोई जीवन रूपी यात्रा करता है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अपनी यात्राएं करता है। पढ़ता है, कॉलेज में जाता है, फिर नौकरी करता है, फिर जीवन में सेटल होता है, फिर बच्चों को सेटल करता है, ऐसी बहुत सारी यात्राएं हैं। इन सब यात्राओं में अगर मैंने सिक्योरिटी के सिद्धांतों को इन किया, अंदर झांका, तो बाय डिफॉल्ट वी विल क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ अटमोस्ट इनसिक्योरिटी। कहते हैं, वैसे तो इतिहास के पन्नों पर, नेक्स्ट स्लाइड, इतिहास के पन्नों पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं या संदर्भ है जो हमें बहुत कुछ बातें बताने का प्रयास करता है। इट सो हैपेंड इन द ईयर 1912, अप्रैल 15, 1912, इन द आइसी कोल्ड वाटर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, अ ब्रिटिश ओशन लाइनर वॉज ऑन इट्स मेडन वॉयज। इनके निर्माता और इंजीनियर्स ने इस शिप का नाम रखा, आपने ये मूवी देखी है, ये फिल्म देखी है, कौन सी मूवी थी, टाइटैनिक, जिसका नाम वहां पे लिखा हुआ है। और ये इंजीनियर्स और ओनर्स का मानना था कि ये संसार का सबसे पहला, सबसे बड़ा, द मोस्ट लग्जोरियस अनसिंकेबल ओशन लाइनर, ये पानी में कभी डूब नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इनके इंजीनियर्स और ओनर्स का मानना था कि हमने ये शिप इस तकनीक से बनाया है जिसको उन्होंने कहा डबल हल कंस्ट्रक्शन, जिसकी दो बॉडी था। और उनका यह मानना था, मान लीजिए इन द इवेंचुअलिटी ऑफ एनी एक्सीडेंट, मान लीजिए सागर में अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो इसका बाहर का जो बॉडी है उसको नुकसान पहुंचाएगा, अंदर का बॉडी विल रिमेन इंटैक्ट, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, एंड द शिप विल ऑलवेज रिमेन अफ्लोट द वॉटर, इट विल नेवर सिंक इन वॉटर, वो कभी डूब नहीं सकता था। और इनके इंजीनियर्स और ओनर्स इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को लेकर कि उन्होंने उस इवेंचुअलिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। और डियर फ्रेंड्स, आपने ये मूवी देखी है, ऑन दैट फेटफुल नाइट ऑफ अप्रैल 15, 1912, व्हेन दिस माइटी लग्जोरियस ओशन लाइनर वॉज क्रूजिंग एट ग्रेट नॉटिकल स्पीड, इतनी तेज गति से जा रहा था, और जब उसने वो आइसबर्ग से हिट किया, द इंपैक्ट वॉज सो सीवियर कि वो आइसबर्ग ने वो बाहर का बॉडी ही नहीं, अंदर का बॉडी को भी चीरता हुआ अंदर चला गया। एंड विद इन नो टाइम, विद इन नो सेकेंड्स, गैलन्स ऑफ आइसी कोल्ड सॉल्टी वाटर, वो समुद्र का ठंडा खारा पानी उस शिप के अंदर भरने लगा। और धीरे ही धीरे, आपने वो मूवी देखी है, धीरे ही धीरे वो सबसे बड़ा लग्जोरियस ओशन लाइनर डूबने लगा, एंड विद इन नो टाइम इट वॉज ऑन द सी बेड। उस फेटफुल नाइट ऑफ अप्रैल 15, 1912, ऑन बोर्ड उस शिप में 1500 लोग थे, माताएं, बहनें, पुरुष, क्रू मेंबर्स एंड चिल्ड्रन। क्या बता सकते हैं कितने लोगों की जानें गई होंगी उस टाइटैनिक शिप का इस आइसबर्ग के साथ हिट होने के कारण, कितने लोगों की जानें गई होंगी। वैसे मैं यही, ऐसा ही एक सेशन बॉम्बे में करा रहा था, नवयुवकों को करा रहा था, हाउ टू एंजॉय एग्जाम्स के बारे में, तो मैंने यही सवाल उनसे भी पूछा, तो एक नवयुवक खड़ा होकर कहता है, सर मैं रिप्लाई दूं क्या? मैंने कहा हां भले। उन्होंने कहा, सर ओनली वन सर्वाइव्ड। मैंने कहा, इसका मतलब 1499 डाइड। बोला, यस सर। मैंने कहा, इतना गारंटी के साथ आप कैसे कह सकते हो? बोला, सर फिल्म में हीरोइन बच गई थी सर, इसीलिए एक सर्वाइव्ड, द रिमेनिंग ऑल पेरिश्ड। मैंने कहा, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। फ्रेंड्स, द एस्टॉनिशिंग आंसर इज ओनली फ्यू पीपल डाइड, हैंडफुल ऑफ पीपल, आप गिनती कर सकते थे अपने हाथ की उंगलियों में, बिकॉज ऑफ द टाइटैनिक हिटिंग द आइसबर्ग, मेजॉरिटी ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइव्स, इट नॉट बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट, बिकॉज द टाइटैनिक डिड नॉट हैड इनफ लाइफ बोट्स। उस टाइटैनिक, इतना बड़ा शिप में उनके इंजीनियर्स और ओनर्स ने छोटे छोटे लाइफ बोट्स रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि यह शिप कभी डूब ही नहीं सकता है। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, इतना बड़ा शिप, और वही सेफ्टी का पहला सिद्धांत है। सेफ्टी मींस एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कल क्या होने वाला है, क्या मैं आज ही उसके लिए प्रिपेयर कर सकता हूं? और अगर कर सकता हूं, उसको सोच करके उसके नियमों को और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण कर सकता हूं, तो कल की जर्नी वुड बी 100% सेफ। सेफ्टी का अर्थ ही यही है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट स्लाइड, वो देखिए ये कहा है, वो जो आइसबर्ग है वो इतना छोटा है ऊपर, लेकिन उसका जो सारा बॉडी था, इट वॉज लाइक अ माउंटेन। सेफ्टी इज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट स्लाइड। और इस स्टोरी से मुझे यही सीखने को मिलता है, द विल टू विन इज इंपॉर्टेंट। हम सब जीवन के हर क्षेत्र में जीतना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये इच्छा कि मैं जीतना चाहता हूं इसकी पाई पैसे की भी कीमत नहीं है. अनटिल एंड अनलेस आई हैव द विलिंगनेस टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द अनएक्सपेक्टेड. आज ये मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि आज से एक साल बाद, दो साल बाद, चार साल बाद, दस साल बाद, जो अभी दादी जानकी जी कह रहे थे, एक ऐसा सुंदर भविष्य, क्या मैं उसके लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूं ताकि ईश्वर परमात्मा भी मुझे देखकर शुक्रिया अदा करे, वाह मेरे बच्चे वाह, और हम भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आपने मुझे इतना अच्छा राह दिखाया. एंड दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द विल टू विन इज इंपॉर्टेंट, बट इट इजंट वर्थ अ पेनी और अ निकल अनटिल एंड अनलेस वी हैव द विलिंगनेस टू प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड. इसके लिए मुझे लाइफ के सिद्धांतों को जानना पड़ेगा. कहते हैं लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल. जीवन क्या है? साइकिल चलाने के मुआफिक है. We fall only when we stop pedaling. हम गिरते तभी हैं जब हम जीवन के यात्रा में रुकावटें पैदा करते हैं. एक्सीडेंट जब होता है तो गाड़ी रुक जाती है, और कुछ भी संदर्भ हो, कुछ भी परिस्थिति हो, मुझे लगातार अग्रसर करते जाना है. Life is not a destination, it's a journey. वो एक यात्रा है, वो अंतिम लक्ष्य पहुंचना वो सेकेंडरी है. कि किस प्रकार मैं जीवन को जी रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है. इसीलिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, कहते हैं इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू डू, हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, रादर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ आई डू इट. बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो कार्य को किस रीति से कर रहे हैं. हर व्यक्ति रोड पर चलता है, लेकिन वो व्यक्ति जो रस्सी पे चलता है उसको हम कहते हैं क्या स्किल है. भल दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन रस्सी पे चलना हम कहते हैं उसके पास कोई स्किल है या कोई आर्ट है. इसीलिए जीवन में भी चलते हुए वो स्किल या आर्ट को मुझे धारण करना पड़ेगा. कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज न्यू एक्सीडेंट, जस्ट न्यू विक्टिम्स. अगर मैं रेलवे डिपार्टमेंट से कुछ आपको उदाहरण दूं, रेलवे में गिनती के दो तीन प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं. या तो ट्रेन डीरेल हो जाता है, पटरी से उतर जाता है, या फिर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकरा जाता है, एक ट्रेन खड़ा है पीछे से जाके हिट करता है, या हेड ऑन कोलिशन होता है, या फिर ट्रेन में आग लग जाती है. यही दो तीन प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं हम हर वक्त, या फिर ब्रिज से गिर जाता है, या ब्रिज टूट गया, यही तीन चार प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं. लेकिन हर बार यही प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मरने वाले वो सब नए होते हैं. एंड दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ यू नो एक्सीडेंट कम्स इनटू पिक्चर. इसीलिए कहावत है इंग्लिश में, कहते हैं इट टेक्स 8,640 बोल्ट टू असेंबल अ कार. 8,640 नट बोल्ट को फिट करने से हम एक कार बना सकते हैं, एंड ओनली वन नट टू क्रैकर इट ऑल ओवर द रोड. और एक छोटी सी गलती क्या कर देती है, पूरा अंजर पंजर रोड में स्कैटर करा देती है. कितना मेहनत लगता है उसको बनाने में, और एक छोटा सा गलती, शायद मैं मोबाइल फोन में बात करते हुए चला रहा हूं, ओनली वन नट टू स्कैटर इट ऑल ओवर द रोड. और इसीलिए कहते हैं सेफ्टी क्यों ये ट्रेनिंग आपके लिए रखा है, या आपको यहां निमंत्रण दिया गया है. इंग्लिश में कहावत है अ सेफ यू इज अ सेफ मी. मैं पूरे सिद्धांतों को धारण करता हूं रोड पे चलाते वक्त या किसी भी कार्य क्षेत्र में, लेकिन सामने वाला गलती करता है तो नुकसान किसको होता है, शायद मुझे भी हो जाता है. तो सिर्फ मुझे ही सुरक्षा के सिद्धांतों को धारण नहीं करना है, मुझे अन्य उन सभी व्यक्तियों को भी बताना पड़ेगा जो गाड़ी चलाते हैं. मैं ही सिर्फ सही चलूं और दूसरा गलती करे तो उसको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान हो जाएगा. वैसे तो कहते हैं सारे संसार में 11,000 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ ह्यूमन लाइफ, इतना ज्यादा नुकसान होता है सारे विश्व में एक साल में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में. 11,000 बिलियन यूएस डॉलर्स. और यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट था, उनका यह मानना था अगर यह पैसा को हम बचा लें तो सारे विश्व के हरेक मनुष्य को एक दिन का फ्री भोजन खिलाया जा सकता है अगर इनको हम बचा सकते हैं तो. लेकिन छोटी छोटी बातों को हमको धारण करना जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसीलिए कहते हैं अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो. आज अगर मैं अलर्ट रहता हूं, सावधान रहता हूं, तो कल का मेरा भविष्य बहुत ही सुनहरा हो जाएगा. दादी जी कह रहे थे वर्तमान प्रेजेंट इसीलिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, पास्ट इज हिस्ट्री फ्यूचर इज मिस्ट्री, पास्ट इज हिस्ट्री फ्यूचर इज मिस्ट्री, लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट अर्थात गिफ्ट। आज का ये 24 घंटा ईश्वर के द्वारा दिया गया मेरे लिए एक बहुत अच्छी सौगात है, मैं ना पास्ट की चिंता करूं ना भविष्य की चिंता करूं, आज का 24 घंटे को मुझे क्या करना है, सफल बनाना है। इसीलिए कहा हैव अनदर डे बाय बीइंग सेफ टुडे, आज अगर मैं सुरक्षित रहता हूं तो कल का सूरज देख सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन पहले यहां पर हमारा जो हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए हमारे जो रोज के क्लास चलते हैं उसमें ईश्वर परमात्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जिसको कहा था इंश्योरेंस कराना है। हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस, हमारे लाइफ का इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, लेकिन इस इंश्योरेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस का फायदा मरने के पश्चात होता है कि नहीं। मैंने अपना इंश्योरेंस कराया, जब तक जीवित हूं तब तक फायदा नहीं मिलता है, मरने के पश्चात मुझे भी नहीं मिलेगा, मेरे घर परिवार वालों को मिलता है। क्या ऐसा कोई इंश्योरेंस टेक्निक है क्या जिसको धारण करने से जीते जी ही मैं उसका बेनिफिट भी ले सकूं? और उसके लिए हम कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड, इसीलिए हम कहते हैं द प्राइस फॉर एन एक्सीडेंट इज ऑलवेज हाई। क्या एक लॉस्ट हस्बैंड टू अ विडो वो इंश्योरेंस पॉलिसी गारंटी करा सकता है क्या? द लॉस्ट चाइल्ड टू द बिरीव्ड फैमिली, एक खोया हुआ दोस्त एक्सीडेंट में दूसरे दोस्तों को वो वापस दिला सकता है क्या ये इंश्योरेंस पॉलिसी? सेफ्टी इज दैट चीप एंड इफेक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी विच विल इंश्योर दैट द हस्बैंड रीचेस बैक होम सेफली, विच विल इंश्योर दैट द चाइल्ड विल रीच होम सेफली, दैट द फ्रेंड इज देयर फॉर मी। और वो छोटा सा जिसमें हमें कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी देने की जरूरत नहीं है, और वो छोटा सा वेरी इफेक्टिव जो जीते जी मैं उसका बेनिफिट उठा सकता हूं, और वो है सेफ्टी। कहते हैं सेफ्टी इज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर अ रिच फ्यूचर। आजकल तो लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते काई के लिए मालूम है? अंडर सेक्शन 80 जी में बेनिफिट पाने के लिए। इंश्योरेंस दूर, एक इंश्योरेंस टाटा AIG का इंश्योरेंस, LIC का इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा का इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल का इंश्योरेंस, क्यों चले? इंश्योरेंस तो हो गया, लेकिन फिर इनकम टैक्स बेनिफिट भी देखते हैं। लेकिन ये जो सेफ्टी है बहुत ही अच्छा, जीते जी हम उसका बेनिफिट उठा सकते। कहते हैं सेफ, SAFE, सेफ मतलब क्या है? स्टेइंग एक्सीडेंट फ्री एवरीवेयर, हर पल हर क्षण मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, अर्थात मैं सुरक्षित हूं। सेफ्टी इज एज सिंपल एज ABC। बच्चों को सिखाते ना ABC, क्या है वो ABC? ऑलवेज, ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बी, सी फॉर केयरफुल। दादी जी ने अभी कहा था केयरफुल रहना है, चीयरफुल रहना है, यात्रा करते हैं ना, तो ऑलवेज बी केयरफुल सो दैट मैं अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच सकूं। इसीलिए कहते हैं डोंट लर्न सेफ्टी बाय एक्सीडेंट, सुरक्षा को एक्सीडेंटली नहीं लर्न करना है, मुझे बहुत ही बोधावस्था में रहते हुए सेफ्टी के सिद्धांतों को धारण करना पड़ेगा। इसीलिए सेफ्टी ट्रेनिंग की आवश्यकता, इसीलिए वो एक स्टेप, और शायद इसीलिए ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग ने आपको यहां निमंत्रण दिया, और एक वो स्टेप अर्थात सेफ्टी ट्रेनिंग इन एवरी पर्सन। सिर्फ मैं ही नहीं, हम जितने लोगों से मिले उन सबको सेफ्टी के बारे में अवगत कराएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके लिए मुझे, जैसे मैंने कहा था, मैं एनालॉजी आपको सेट करके दूंगा, प्रोसेस ऑफ जर्नी। एक है हमारा स्थूल यात्रा, दूसरा है जीवन रूपी यात्रा को जानना पड़ेगा। या क्लिक ब्रदर, क्लिक नहीं, आगे बढ़िए, गो एड, और भी जाइए, और भी गो एड, या स्टॉप। स्थूल यात्रा में कहते हैं कौन उस यात्रा में सफर कर रहा है, द ड्राइवर हु इज ड्राइविंग द व्हीकल, किसके माध्यम से वो कर रहा है, कोई गाड़ी के माध्यम से कर रहा है, विथ हुम, किसके साथ वो उस यात्रा को सफर कर रहा है, उसके साथ उसके पैसेंजर्स होंगे, उसके सहभागी होंगे, और किस रीति से कर रहा है, व्हाट आर द वेरियस मोड्स, चाहे वो एयर ट्रैवल हो सकता है, वाटरवेज हो सकता है, रोडवेज हो सकता है, ये हुआ एक स्थूल जर्नी। कौन कर रहा है? ड्राइवर एक गाड़ी के माध्यम से सह यात्रीगण के साथ और अलग अलग माध्यमों के तरीके से, चाहे वो रोडवेज है, रेलवेज है या वाटरवेज है। नेक्स्ट, इसी को मुझे आध्यात्मिक रीति से भी धारण करना पड़ेगा। मुझे याद आता है आज से कुछ वर्ष पहले मैं थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक कंपनी में गया और मैंने कहा, सर मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आया हूं जिसके 9000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र है, जो सारे विश्व भर में है, हमारा जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है वो माउंट आबू में, हमारे बहुत सारे विंग्स बने हुए हैं, मेडिकल विंग है, जूरिस्ट विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग है, चिल्ड्रंस विंग है, यूथ विंग है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग है, विमेन विंग है, पॉलिटिशियन विंग है, हम बहुत सारी सेवाएं करते हैं, हमको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिमूवल प्रोजेक्ट, हमको इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, हमारी दादी जानकी जी जो है द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड है, ब्ला 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 बहुत सारी बातें की। तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई आप चाहते क्या हो? मैंने कहा, सर मैं आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको सेल्फ मैनेजमेंट का एक छोटा सा लेक्चर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, गिरीश थैंक यू सो मच। मैंने कहा, सर आप चिंता नहीं करिए, हमारे पूरे कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हम आपसे कोई चार्ज भी नहीं करेंगे। बोला, अरे गिरीश हम तो ऐसे लोगों का हमेशा स्वागत करते हैं, थैंक यू सो मच, वी ऑलवेज इन द लुकआउट फॉर सच काइंड ऑफ पीपल हु कैन ट्रेन आवर पीपल। मैंने कहा, थैंक यू सर, कब करना है बताइए। उन्होंने कहा, गिरीश आई एम वेरी सॉरी, राइट नाउ मैं आपको ये ऑनर नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा, क्यों सर? बोला, अभी हमारा कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, रात दिन हमारा प्रोडक्शन चालू है, तो मेरे एम्प्लॉइज फ्री नहीं है, इसीलिए मैं अभी आपको ये चांस नहीं दे सकता हूं। एनीवे आप अपना टेलीफोन छोड़ जाइए, जब भी जरूरत होगा मैं आपको फोन करूंगा। मैंने कहा, थैंक यू सर। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उनको दिया, टाटा बाय बाय गुड नाइट किया, और जैसे ही मैं उनके कैबिन से बाहर निकला, जाते जाते उनके दरवाजे में खड़ा होकर उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, सर कैन यू टेल मी हु आर यू? तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये सुबह सुबह आया था, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था, सर ब्रह्मा कुमारी इज फ्री ऑफ कॉस्ट, 9000 सेंटर्स, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, और जाते जाते मेरा अपमान करता है, मुझसे पूछता है हु आर यू? इसको क्या लगता है मेरे सुपीरियर के पास चला जाएगा तो इसको चांस मिल जाएगा, क्योंकि उसने मना कर दिया था। ही स्टूड ऑन हिज यू नो फीट, थंब्ड ऑन द टेबल एंड सेड, गिरीश, बहुत ईगो, उसको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, गिरीश डोंट यू नो आई एम द एचआर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी? मैंने कहा, सॉरी सर, जब मैं आपके कैबिन में एंट्री कर रहा था मैंने अपना आपका डिजिग्नेशन बोर्ड पढ़ लिया था, मुझे मालूम है आप एचआर मैनेजर हैं, मैंने आपका पोस्ट नहीं पूछा है कि आप एचआर मैनेजर हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है कि वकील हैं या डॉक्टर है या इंजीनियर है या हाउसवाइफ है या जो भी है, मेरा सिंपल सा सवाल है, आप कौन है? उन्होंने कहा, मेरा नाम फलाना फलाना है। मैंने कहा, सॉरी सर, आपके डिजिग्नेशन बोर्ड के ऊपर आपका नाम भी लिखा है, वो मैं जानता हूं, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं पूछा, माई सिंपल क्वेश्चन स्टिल होल्ड्स गुड, सर कैन यू टेल मी हु आर यू? मैंने आपका नाम शर्मा है, वर्मा है, पाटिल है, पटेल है, ये नहीं जानना, मैं जानता हूं आपका नाम क्या। उन्होंने कहा, मैं भारतीय हूं। मैंने कहा, सॉरी सर, मैंने आपकी नेशनैलिटी भी नहीं पूछी है कि आप इंडियन है कि पाकिस्तान है कि ब्रिटिश नेशनल है कि अमेरिकन है, मेरा सिंपल सा सवाल है कि आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं। मैंने कहा, सॉरी सर, मैंने आपका धर्म के बारे में भी नहीं पूछा कि आप हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, आई डिड नॉट आस्क फॉर योर रिलीजन, माई सिंपल क्वेश्चन इज हु आर यू? उन्होंने कहा, मैं गुजराती हूं। मैंने कहा, सॉरी सर, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी मैंने आपको पूछा नहीं कि आप गुजराती हैं कि महाराष्ट्र है कि साउथ इंडियन है कि कश्मीरी है कि असमिया है, मेरा सिंपल सा सवाल है कि आप कौन है? थोड़ा देर उन्होंने सोचा, फिर बोला, मैं पुरुष हूं। मैंने कहा, सॉरी सर, इतना कॉमन सेंस है कि देख के बता सकता हूं कि आपका जेंडर क्या है, पुरुष है कि महिला है वो मैं बता सकता हूं। और कंफ्यूज हो गए, आई केप्ट ऑन नेगेटिंग हिज आंसर्स, नो सर, नो सर, नो सर। थोड़ा देर और सोचा, उन्होंने फिर कहा, गिरीश जो मैं दिख रहा हूं वही हूं मैं। मैंने कहा, सॉरी सर, जो आप दिख रहे हैं वो भी आप नहीं है। इमीडिएटली ही पोज द क्वेश्चन, गिरीश कैन यू टेल मी हु एम आई? क्या तुम बता सकते हो मैं कौन हूं? मैंने कहा, सर इसीलिए तो आया था यहां पे, सेल्फ मैनेजमेंट। आप डिक्शनरी खोल लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आपको कम से कम 30 वर्ड मिल जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ बिलीफ, नॉट लेस देन 30 वर्ड्स विच स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ। लेकिन हम फोकस करते हैं एस्टीम में, एम्पावरमेंट में, कॉन्फिडेंस में, ये सेल्फ को तो भूल ही जाते हैं। क्या मैंने थोड़ा देर भी बैठ करके ये सोचा है? मैं दिन में हजार बार मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा कहते हैं, लेकिन इस मैं को समझा नहीं। और मैं को समझा भी तो कैसे, अपने जो रोल्स में एसोसिएट करता, मैं पिता हूं, पति हूं, भाई हूं, बंधु हूं, बॉस हूं, सबॉर्डिनेट हूं, जो मैं यथार्थ में नहीं हूं, उस मैं को समझना बहुत जरूरी है। और जहां मैंने उस मैं को समझ लिया, ये यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी जो दादियां हैं, इन्होंने अपने मन में कूट कूट कर भर दिया ये मैं, अर्थात इस शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति, वो पावर, वो एनर्जी, वो फोर्स, जिसको हम आत्मा या रूह या सोल या स्पिरिट या फोर्स या एनर्जी कह सकते, वो इस शरीर को चलाती है। और वो आत्मा बहुत ही सुखदाई है, बहुत ही शांत स्वरूप है, बहुत ही प्रेम स्वरूप है। जितना मैं उसके कॉन्शियसनेस में रहता हूं, उसके बोध अवस्था में रहता हूं, बॉडी के कॉन्शियसनेस से हट करके आत्मिक स्थिति में रहता हूं, हमारी जीवन यात्रा इतनी सुखदाई बन जाती है। इसीलिए कहते हैं, है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है शक्तिशाली वही जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फलने वाला तरु भी जब फलता है तो नीचे की ओर झुक जाता है, फलने वाला तरु भी जब फलता है तो नीचे की ओर झुक जाता है। मैना कहती है मैना कहती है मैना तो सबके मन को भाती है, मैना कहती है मैना तो सबके मन को भाती है, बकरी कहती है मैं तो गले छुरी चलवाती है, बकरी कहती है मैं तो गले छुरी चलवाती है। आप देखेंगे यहां पर हम अपने जो ईगो है, हमारा जो अभिमान है, उसको मुझे नीचे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये पता चला है कि ये यथार्थ जीवन को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला ये शरीर नहीं है, इसके अंदर वो चैतन्य शक्ति जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं मैं, इस शरीर से अलग अति सूक्ष्म शांत ज्योति स्वरूप आत्मा, ये है ड्राइवर, इस शरीर को चलाने वाला, ये इसका वो गाड़ी है। किसके माध्यम से चलाता है? शरीर के माध्यम से। शरीर क्या है? हम अपने आप को कहते हैं आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन अर्थात वेरियस ऑर्गन सिस्टम, हार्ट, लंग्स, किडनी, बीइंग इज व्हाट एग्जिस्ट, बीइंग जो चैतन्य है जो चलाता है। मुझे याद आता है, मान लीजिए गिरीश भाई का एक्सीडेंट हो जाए यहां आते आते, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने देखा, ओ माय गॉड, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, उसको उठा करके ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कहा, भाई बहुत सीवियर इंजरीज हुआ है, सीधे गिरीश का पता किया, भाई इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब पता करके सीधे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। और जो भी मेरे नजदीक के संबंधी थे वो इंतजार कर रहे हैं, भाई क्या हुआ क्या हुआ। 2 घंटे के बाद, मैसिव सर्जरी के बाद, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है और कहता है, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज टेक द बॉडी अवे। अंदर किसको लेकर गए थे? गिरीश को। बाहर कौन आ रहा है? बॉडी। अरे गिरीश कहां गया? कोई भी डॉक्टर इस संसार में एक डेड बॉडी को उसके नाम से कभी भी संबोधित नहीं करता है। अगर डेड बॉडी को संबोधित नहीं कर सकते, अगर आप मुझे आज गिरीश कह रहे हैं, इसका मतलब आज भी आप इस शरीर को संबोधित नहीं कर रहे हैं, आप इसके अंदर वो चैतन्य शक्ति को संबोधित कर रहे हैं। उसको मुझे समझना बहुत जरूरी है। किसके साथ मैं जीवन रूपी यात्रा में कर रहा हूं? अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, अपना सोशल ग्रुप, अपने सगे संबंधियों के साथ में जीवन के इस यात्रा में अग्रसर हूं। और किस माध्यम से करता हूं? और इसको करने के लिए जिसको हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, या फिर संकल्पों के द्वारा, मुख के द्वारा, एक्शंस के द्वारा और नॉलेज के द्वारा मैं अपने इस जीवन को अग्रसर हो रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कहते हैं एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट से होता क्या है? एक्सीडेंट होता है ना तो गाड़ी रुक जाती है, फिर हमारा प्रोसेस ऑफ जर्नी क्या हो जाता है? रुक जाती है, आगे हम बढ़ नहीं सकते। दोनों ही संदर्भ में अगर हम देखें, जब हमारा फिजिकल एक्सीडेंट होता है ना, तो मान लीजिए बोनट खराब हो गया है या बहुत सीवियर हो गया, तो हम वहीं छोड़ना पड़ता है हमको गाड़ी, हमको फिर मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, प्रोसेस ऑफ जर्नी गेट्स हिंडर्ड। इसी तरह स्पिरिचुअल जर्नी में भी एक्सीडेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंट का अर्थ बताया A/C अर्थात अकाउंट। आप सब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हो, जो अकाउंटेंट होंगे वो समझते हैं, A/C मतलब अकाउंट, ACCI एंड डेंट, DENT। जब मैं अपने स्पिरिचुअल अकाउंट में डेंट माना, उसको तकलीफ पहुंचा दिया। स्पिरिचुअल अकाउंट क्या है? मेरे शुद्ध कर्मों का खाता, मेरे शुद्ध संकल्पों का खाता, मेरे दुआओं का खाता, खुशी का खजाना, समय का खजाना, ये सब मेरा अकाउंट है, मेरा इमोशनल टैंक है। जब इसमें डेंट क्रिएट कर देता हूं, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में भी रुकावटें आ जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? कैसे पता चलेगा कि मेरे स्पिरिचुअल अकाउंट को भी एक्सीडेंट लग गया है? जब मेरा जीवन जो है नीरस बन जाता है, खुशी गायब हो जाती है, चिंता घर कर लेती है, हर बात क्या होगा कैसे होगा, जैसे कल डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी कह रहे थे, हर बात चिंता में बिजी हूं मैं, इसका मतलब मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट में भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, मुझे देखना है कि मेरे जो वो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको मुझे फिर सुधारना है। बोथ द केसेस में हमारा एक्सीडेंट होता है। कहते हैं एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट हर्ट्स, सेफ्टी डजंट। एक्सीडेंट क्या करता है, मुझे नुकसान पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है, सेफ्टी मुझे दर्द नहीं पहुंचाएगा। चेक बिफोर यू रेक योर सेल्फ, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप की चेकिंग करनी पड़ेगी। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें हर बात की चेकिंग सिखाई जाती है, संकल्पों का चेकिंग, कर्मों का चेकिंग, बोल की चेकिंग। और जितना हम अपनी खुद की चेकिंग करते जाएंगे उतना उतना, गाड़ी शुरू करने से पहले देखते हैं ना, टायर में हवा है कि नहीं है, ब्रेक लग रहा है या नहीं लग रहा, हेडलाइट है या नहीं है, हैंड ब्रेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते। इसी तरह जीवन में भी हमको चेक करना बहुत जरूरी है। कहते हैं डोंट बी सेफ्टी ब्लाइंडेड, बी सेफ्टी माइंडेड। हर बात को मुझे सेफ्टी के आधार पर आगे बढ़ना है। कहते हैं इफ यू ड्रिंक एंड ड्राइव यू माइट एज वेल स्मोक। बहुत बड़ा एक समस्या है, यहां तक कि मैं, वैसे तो मैं बॉम्बे से हूं, दो दिन पहले डीएनए न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, बॉम्बे में बहुत रोड रैश के केसेस हैं, आप भी शायद जानते होंगे, काफी लोगों की मृत्यु होती है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने क्या किया, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, जो भी कार चला रहा है उनके पास पूछते हैं, एंड दे हैव एन एनालाइजर विच सीज वेदर द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और नॉट। अब क्या कर दिया है, जितने भी बार्स हैं बॉम्बे में, जितने भी लोग पार्टी में जाते हैं, मालूम है क्या करते हैं, आप पार्टी में जाइए, बार में जाइए, जितना पीना है पी लीजिए, सेवन करिए, और वो जो बार है वो आपको एक ड्राइवर फ्री में प्रोवाइड करेगा ताकि आपको घर तक पहुंचा देवे, ताकि आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। देखो कहां किस दिशा में मनुष्य आत्माएं सोच रहे हैं, क्या मैं इस बुरी आदतों से अपने आप को छुड़ा सकता हूं। इफ आई ड्रिंक एंड ड्राइव अल्टीमेटली आई विल एंड अप इन एन एक्सीडेंट और फिर अंतिम यात्रा स्मोक। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। वैसे तो कहते हैं एक बार एक कैंटोनमेंट एरिया में एक डॉक्टर इंस्पेक्शन के लिए गया और वहां के कैप्टन से पूछा, कैप्टन हाउ डू यू इंश्योर नॉन कंटामिनेशन ऑफ वाटर। पानी में बहुत ज्यादा जो मिलावट हो जाती है ना, जिससे कि आर्मी के जवान, उससे उनकी तबियत खराब ना हो। तो वो कैप्टन कहता है, सर वी एड क्लोरीन टैबलेट्स इन वॉटर टू डी कंटेमिनेट इट। हम लोग है ना क्लोरीन का टैबलेट डालते हैं जिससे कि वो पूरा जो मल है वो नीचे रह जाए। बोला वेरी गुड कैप्टन, वॉट डू यू डू टू इंश्योर मोर प्योरिटी ऑफ वॉटर, इससे ज्यादा और क्या करते हो। बोला सर फिर हम जो है ना पानी को उबालते भी हैं। बोला वेरी गुड कैप्टन, बोला इससे भी ज्यादा अगर सेफ रखना है पानी को तो क्या करते हैं। कैप्टन कहता है, सर उसके बाद हम पानी को छानते भी हैं। बोला माई गॉड एब्सोल्यूटली ग्रेट, बोला टू बी स्टिल ऑन द सेफर साइड, पानी में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कचरा है कुछ भी है उससे भी अगर आपको सेफ रखना है तो आप क्या करते हैं। कैप्टन कहता है, सर इन दैट केस वी ड्रिंक बियर। अरे पानी को उबाला, पानी में क्लोरीन टैबलेट ऐड किया, पानी को छाना, लेकिन पीते क्या है, सीट बेल्ट लगा दिया, हुंडई कार खरीद लिया, विच है साइड कोलिजन बाज, विच हैड क्या बोलते हैं हेड स्पेस ज्यादा है, इंजन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आई हैव बॉट द बेस्ट सेफेस्ट कार ऑन इन इंडिया, लेकिन फिर शराब के नशे में मैं गाड़ी चला। तो क्या है ये, हमारी बुद्धि हैज गॉन फॉर अ टॉस। और इसके लिए मुझे समझना है इन द्रव्यों से, इन नशीले पदार्थों से मुझे दूर रहना बहुत बहुत जरूरी है। कहते हैं एक बार एक नवयुवक जिसको पीने की आदत थी, ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, उसको पता चलता है कि उसके शहर में एक बहुत बड़े साधु महाराज आए। वो उनके पास जाता है और कहता है, साधु महाराज मेरे अंदर ना ये बुरी आदत है नशीले पदार्थों का सेवन करने का, मुझे इससे छुटकारा पाना है। तो साधु महाराज कहते हैं, अगर आप छूटना चाहते हो तो फिर आपने शुरू कैसे किया। बोला महाराज तो बहुत लंबी कहानी है, मैं कैसे आपको बताऊं। बोला नहीं 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 बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा, जब मैं स्कूल में था तो बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, मैं हमेशा फर्स्ट रैंक आता था, लेकिन जैसे ही कॉलेज में गया तो कॉलेज का वातावरण परिवेश थोड़ा बदल गया, संघ का रंग लग गया, और पहले ही साल में मैं फेल हो गया। तो मुझे मेरे मम्मी पापा के जो एक्सपेक्टेशंस थे, जो आशाएं थे मेरे दोस्तों से, मेरी जो आशाएं थी, मेरे टीचर्स की जो आशाएं थी, सबको मैंने पानी में फेर दिया। इससे मैं बहुत हताश रहने लगा, मैं बहुत डिप्रेस हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो मेरे दोस्तों ने कहा, अरे यार तू आजकल बहुत दुखी रहता है, चल तेरे को हम ऐसी दवाई पिलाते हैं जिससे तेरा दुख दर्द दूर हो जाएगा। और महाराज उन्होंने मुझे एक बार कम रेस्टोरेंट में लेके चले गए और वहां जाकर पहली बार उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो फिर महाराज ने कहा, फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा, ना 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 ना, ये सब तो बुरी बात है, सब चीजों को नहीं सेवन करना चाहिए, इससे किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगा, लिवर में प्रॉब्लम हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, संबंधों में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो महाराज ने कहा, फिर क्या हुआ। तो मेरे दोस्तों ने कहा नहीं नहीं एक बार पीले तेरा सब दुख दर्द भूल जाएगा। तो उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि मैंने पहली बार उसका सेवन किया। बोला महाराज लेकिन पहली बार जब मैं सेवन किया तो इट वॉज सो बिटर इन टेस्ट, इतना कड़वा था कि हैड टू स्पिट इट आउट। तो महाराज ने कहा फिर क्या हुआ? तो दोस्तों ने कहा अरे इसका टेस्ट भले कड़वा है लेकिन जब इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देगा, आप तो झूलने लग जाओगे, आपका दुख दर्द सब भूल जाएगा, बस आंख नाक किसी तरह बंद करके एक बार पी जा। तो महाराज ने कहा फिर क्या हुआ? बोला महाराज एकदम सही कहा था उन्होंने, मैंने आंख नाक बंद करके किसी तरह पिया, थोड़ा देर तो कड़वा लगा लेकिन उसके बाद का जो आनंद था इतना सुंदर था, मैं सब दुख दर्द भूल गया। तो महाराज ने कहा तो फिर आप उसी आनंद की स्थिति में रहो ना, मेरे पास क्यों आए हो, क्यों छुड़वाना चाहते हो? बोला महाराज वही तो प्रॉब्लम है, उस वक्त थोड़ा सा लेता था तो बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती, आज तो पूरा बोतल ले लेता हूं तो भी अनुभूति नहीं होती है। एंड आई नो समवेयर दैट आई एम यू नो ट्रबलिंग माई सेल्फ, मेरे संबंध खराब हो गए, मेरे मन नहीं लगता है पढ़ाई में, प्लीज महाराज कुछ ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं इन बातों से छुटकारा पा सकूं। मालूम है उस महाराज ने क्या कहा होगा? वो महाराज ने कहा तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो? बोला यस महाराज। तो उन्होंने कहा व्हाट वाज द टेस्ट ऑफ लिकर, उसका टेस्ट क्या था, कड़वा था या मीठा था? कड़वा था ना, लेकिन आपने इतना मेहनत करके आंख नाक बंद करके एक बार पिया तो सही? बोला हां महाराज। तो महाराज ने कहा इसी तरह जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसका टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है या कड़वा होता है? कड़वा ही होता है ना। कैन आई हैव द गट्स टू ड्रिंक द चैलेंजेस ऑफ माई प्रॉब्लम्स हेड ऑन? क्या मेरे अंदर इतनी आत्मविश्वास हो सकता है कि मैं अपने जीवन के इस कड़वे संदर्भों को भी हेड ऑन उसको पीने का प्रयास कर सकूं? गारंटीड उसके बाद जो उसका आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत ही अतीन्द्रिय सुख का होगा, वो बहुत ही सुखदायी होगा। लेकिन हम करते क्या है, हम भागते हैं प्रॉब्लम्स को, एक प्रॉब्लम से बचने के लिए दूसरा प्रॉब्लम और भी क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रॉब्लम से भागना नहीं है। हिंदू शास्त्रों में सबसे ज्यादा अगर किसी देवता का गायन है तो वो है लॉर्ड श्री कृष्णा का। मालूम है क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जिसका जन्म नहीं हुआ लेकिन प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। अरे जन्म नहीं हुआ जिस बच्चे का, उसका मामा सब बच्चों को मारना शुरू कर दिया और अंतिम समय तक, कहते हैं जब युद्ध की बात थी गीता में, जहां पांडवों के साथ या फिर कौरवों के साथ की युद्ध थी तो किसका साथ लूं? तो अर्जुन ने कहा सखा मुझे तो आप ही चाहिए। दुर्योधन ने कंप्लेन किया अरे मैं सारा रात भर इंतजार कर रहा हूं और तुम पहला चांस अर्जुन को दे रहे हो। तो श्री कृष्ण ने कहा दो कंडीशन है, एक या तो मैं रहूंगा या दूसरी तरफ मेरी अक्षुणी सेनाएं रहेंगी, दूसरा मैं सिर्फ आपका सारथी बनूंगा, आई बी योर मियर चैरियटर, मैं आपका सिर्फ घुड़सवारी करूंगा, और तीसरा मैं अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा। अर्जुन ने कहा सखा मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, ऐसे व्यक्ति को लेके क्या फायदा जो सिर्फ घुड़सवारी करेगा और अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएगा। और कहते हैं एवरी एरो दैट वाज शॉट एट अर्जुना हैड टू फर्स्ट से हेलो टू कृष्णा, क्योंकि अर्जुन कहां बैठा है, पीछे बैठा है, सामने कौन बैठा है, कृष्ण बेटा। खुद को बचाओ, अर्जुन को बचाओ, पांच पांडवों को जीत भी दिलाओ, थिंक ऑफ हिज डायलेमा, थिंक ऑफ हिज कंडीशन। लेकिन फिर भी कभी देखा श्री कृष्ण को ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, श्री कृष्ण का स्पॉन्डुलिसिस या फिर स्लिप डिस्क हुआ हो, या श्री कृष्ण को हार्ट ब्लॉकेजेस हुआ हो, या श्री कृष्ण को टेंशन आया हो? नहीं। इसीलिए इतना ज्यादा गायन और वंदनीय योग्य है वो व्यक्तित्व जिसका बचपन से लेकर अंतिम समय तक He was engulfed in problems, problems and problems. लेकिन वो सदा उस प्रॉब्लम से उपराम रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मान लीजिए एक 10 माले की बिल्डिंग है, वो 10वें माले में प्रोफेसर गिरीश रहता है और एक दिन अचानक 10 बजे पता चलता है मान लो आग लग गया है। गिरीश भाई भागते हैं नीचे, अपना मोबाइल फोन उठाते हैं, फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, बोलते हैं सेक्टर 21 नेरूल अग्रवाल कॉर्नर 10वें माले की बिल्डिंग को आग लग गया है, प्लीज कम इमीडिएटली कम। और भागते भागते सब लोगों को बोलता भाई जल्दी भागो, जल्दी नीचे चलो। और नीचे पहुंचता हूं तब तक फायर फाइटिंग इंजन भी आ जाता है, कैप्टन फायर फाइटिंग इंजन से उतरता है, बोलता हु कॉल्ड मी? मैंने कहा सर प्रोफेसर गिरीश मैंने आपको फोन कर, वो देखो 10वां माला आग लग गया है। बोलता कितने बजे आग लगा? मैंने कहा सर टाइम देख के थोड़ी ना आग लगता है, अभी 10 बज रहे, 5 मिनट पहले आग लगाओ। बोलता होल्ड ऑन गिरीश, आग कैसे लगा? सिगरेट पीने से लगा या सिलेंडर के बर्स्ट होने से लगा या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हुआ? टेररिस्ट का एक्ट था। मैंने कहा सर क्या पूछ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, आप आग बुझाइए ना। बोलता होल्ड ऑन गिरीश, इस बिल्डिंग में कितने लोग हैं? मैंने कहा सर नहीं मालूम, एक फ्लोर में चार फ्लैट है, एक फ्लैट में एवरेज में चार लोग, 10 × 40 पकड़ लीजिए कितने हैं। बोला होल्ड ऑन गिरीश, ये टोटल बिल्डिंग की प्रॉपर्टी कितनी है? मैंने कहा सर क्या पूछ रहे हैं, ऑन एन एवरेज आज नेरुल का जो है पर स्क्वायर फुट इज 3000 रुपीज, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। सर आप क्या कर रहे हैं? वो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको क्या करना चाहिए? आग बुझाना है। वो क्या कर रहा है? वो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछता जा रहा है। मेरे जीवन रूपी बिल्डिंग को जब आग लगती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे धन का हो, मेरे को जब प्रॉब्लम आता है तो मैं क्या करता हूं? ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों होता है, आग लग रहा है। Can I be solution oriented? It is said, if I am not a part of the solution, I am still a part of the problem. हो गया, आग लग गई, किसी भी कारणवश है, ये क्यों क्या कैसे कहां के चक्कर में ना फंसकर, Can I be solution oriented? इसीलिए आपको यहां निमंत्रण दिया गया। हमारे पास वो solution है जीवन को कैसे चलाना है। इसीलिए रामायण कहते हैं, कल डॉक्टर गिरीश पटेल भाई ने दिखाया था, मंथरा ने कई कई को उकसाया, दशरथ को कहो राम को वनवास और भरत को राज्य सिंहासन, इसीलिए रामायण हुआ ना। मन को थराना एक पर्सनालिटी है, क्यों क्या कैसे कब कहां किसको थराता है, कई कई का क्यों कहां कैसे कब, ये मन का खेल है। कैन आई बी सो डिटरमाइंड, कैन आई फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ माय लाइफ हेड ऑन? आओ भाई आओ, और आओ प्रॉब्लम, देखता हूं कितना तुम में दम है, भागेगा वो आपसे, गारंटीड है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आज आप देख रहे हैं, इसमें भी बहुत तकलीफें आए, लेकिन वो दादियां घबराए नहीं, क्यों? इतना विश्वास उस ईश्वर परमात्मा में, स्वयं पर इतना दृढ़ता, इतना विश्वास। तो कैन आई बी सो डिटरमाइंड कि इन सब चीजों का हमें, नेक्स्ट स्लाइड, हमें सेवन नहीं करना है। इट इज सेड नो सेफ्टी, उस स्लाइड को देखिए अच्छी तरह, एनओ नो सेफ्टी, KNOW नो पेन। अगर मैं सेफ्टी के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं धारण करूंगा तो मुझे फिर तकलीफों को, पेन को, एग्नी को अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए नो सेफ्टी, सेफ्टी के सिद्धांतों को मैं समझूं, इससे मैं पेन से फ्री हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड ब्रदर, इसके लिए मुझे गोल्डन टिप्स अपने जीवन में धारण करना है। पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या खूब किसी शायर ने कहा है, तमाम उम्र गैरों से की गुफ्तगू बहुत, तमाम उम्र गैरों से की गुफ्तगू बहुत, बहुत बातें की लेकिन आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। तमाम उम्र गैरों से की गुफ्तगू बहुत लेकिन आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। रूह का जिस्म से था अजीब नाता, रूह का जिस्म से था अजीब नाता, तमाम उम्र साथ रहे लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हुई। तमाम उम्र साथ रहे लेकिन आज तक मुलाकात नहीं। ये वो गोल्डन टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यस ब्रदर, नेक्स्ट, जिसको हम धारण करके बहुत अच्छी तरह हम जीवन की यात्रा चाहे स्थूल यात्रा में सेफ्टी को धारण कर सकते। पहला है स्पीड। कहते हैं मोर देन 90% ऑफ द एक्सीडेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्पीड। क्यों? क्योंकि जब स्पीड में चलाते हैं तो कंट्रोल छूट जाता है। भले धीरे चलाते हुए भी अगर एक्सीडेंट होता है तो नुकसान कम होता है, लेकिन स्पीड में चलाते हो तो उसका इंपैक्ट बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए कहते हैं, ब्रदर कैन आई सी दैट, इट सेज इट इज बेटर टू बी मिस्टर लेट दैन टू बी लेट मिस्टर सो एंड सो। इट इज बेटर टू बी लेट फॉर वन मिनट दैन बी लेट सो एंड सो। एक मिनट में मैं अपने जीवन को खो सकता हूं। इसीलिए कहते हैं इट इज बेटर टू लूज वन मिनट इन लाइफ दैन टू लूज लाइफ इन अ मिनट। भले थोड़ा देरी हो जाए उसके लिए मुझे जल्दी जाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक मिनट में, एक सेकंड में, छोटी सी गलती में अपने जीवन से हाथ धो सकता हूं। इसके लिए इसका जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि मन में आने वाले विचारों की गति को भी मुझे नियंत्रण करना पड़ेगा। कल मुझे याद नहीं आता किसने कहा था, लेकिन कहा था ट्रैफिक करना है। हाँ, प्रेम असन भाई कह रहे थे, STRESS, स्ट्रेस का आपको डेफिनेशन बता रहे, ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन के विचारों को थोड़ा सा ट्रैफिक करना। आपको मालूम है यार रेड लाइट क्यों जलता है? रेड लाइट जब जलता है गाड़ी चलाते वक्त क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? ब्रेक। तो यहां भी जब रेड लाइट चले ना तो बाकी सब बातों से अपना मन का विचारों को भी ब्रेक दे दे। और मन के विचारों को ब्रेक देना, अर्थात उसके अंदर की जितने भी कचड़े हैं, वायरस इंफेक्टेड फाइल्स हैं, नेगेटिव फाइल्स हैं, उन सबको डिलीट करना और अच्छी बातों को धारण करना। डॉक्टर गिरीश पटेल भाई कल बहुत ज्यादा सास और बहू के बारे में बता रहे थे, आपके साथ भी मैं एक शेयर करना चाहूंगा। मन को क्यों ट्रैफिक करना, मन के स्पीड को क्यों कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक बार एक न्यूली वेडेड कपल, नया नया विवाह हुआ था, तो जो पत्नी थी वो बहुत सपने संजोती है कि आह मेरा भविष्य इतना सुंदर होगा, ऐसे हम घर में रहेंगे, मेरा जीवन तो इतना सुंदर होगा, बहुत सारे सपनों में वो थी। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और फिर चालू हो जाता है, ठीक है। शी इट दी मदर इन लॉ अपियर्स एज इफ शी इज अ हिटलर, हिटलर जैसा उसका व्यवहार था, हर बात में टोकती थी, हर बात में बोलती थी, और ये बहू का तो जीवन ही जैसे नर्क हो गया, इतना तंग हो गई। अब एक महीना दो महीना किसी तरह सहन किया, अब उसे असहनीय हो गया वो घर का वातावरण। उसी शहर में उनके दोस्त की पापा थे, वो उनके पास जाती है, और अंकल जो थे एक डॉक्टर थे आयुर्वेदिक के, तो वो उनके पास जाती है, बोलती अंकल मेरा जीवन नर्क समान हो गया, एक धाम जीवन में नीरस हो गया, खुशी गई। तो उन्होंने कहा क्या हो गया बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोला मेरी सास जो है ना मुझे रहने नहीं देती, हर बात में टोकती है, बहुत परेशान करती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा अंकल वैसे तो बहुत बड़ा मदद चाहिए मुझे, लेकिन आप करेंगे क्या? बोला हाँ बेटा आपके लिए तो बिल्कुल ही मदद करूंगा। वो कहती है अंकल मैं ना अपनी सासू माँ को मारना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू किल माई मदर इन लॉ। ओ माई गॉड, ये सुनकर तो ये डॉक्टर अंकल थोड़ा घबरा जाता है, बोला अरे भाई ऐसा तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? बोला नो डॉक्टर अंकल, आई वॉन्ट टू किल हर, आप मुझे कैसे ऐसी प्रकार की कोई दवाई दे दीजिए जिसको मैं उसको दे करके उसको भी मार दूं। तो डॉक्टर अंकल ने कहा ये तो सब गड़बड़ बात, ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सहन करो, ये करो। बोला नहीं अंकल बहुत हो गया, अब मैं मारना ही चाहती हूँ। और वो बहुत इंसिस्ट करती है, तो किसी तरह ये डॉक्टर अंकल से दवाई ले भी लेती है, और जैसे ही वो जा रही होती दरवाजे के वहां पहुंचती है तो डॉक्टर अंकल उनको रोकता है, बोला बेटा एक मिनट रुकोगे? बोला हाँ अंकल बोलो। तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है अपनी सासू माँ को मारने के बाद आप बहुत जीवन में सुखी रहेंगे क्या? पुलिस आएगी, आपको भी पकड़ेगी, आपके हस्बैंड को भी पकड़ेगी, साथ में मेरे को भी फ्री गिफ्ट में लेकर जाएगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ सहभागी हूं उसको मारने के चक्कर में, तो आपका जीवन तो जाएगा साथ में मेरा भी खुशी चला जाएगा। बोला ओ डॉक्टर अंकल ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, वापस दौड़ कर आती है। बोला नहीं अंकल आप मुझे आप एक ऐसी दवाई दीजिए जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बोला अरे ये तो और भी प्रॉब्लम हो गया। बोला एक ऐसी दवाई दे दीजिए जिसे पोस्टमार्टम में भी समझ में नहीं आए, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आए, जो स्लो एक्टिंग पॉइजन हो। तो डॉक्टर अंकल ने नहीं मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है। वो किसी तरह हाथ धो के पीछे पड़ जाती है और डॉक्टर अंकल से दवाई ले भी लेती है। डॉक्टर अंकल उसको कहता है ये लो भाई ऐसी एक दवाई है, 6 महीने तक अपने सासू माँ को देते रहना, और 6वें महीने में जाकर ही अपना असर दिखाएगी। पोस्टमार्टम फोरेंसिक साइंस किसी के पास ऐसा अभी टेक्निक नहीं है जिससे कि ये पता चल सके कि आपने जहर दिया, लेकिन कंडीशन एक है कि आपकी माँ को सासू माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको जहर दे रहे हो। बोला नो डोंट वरी अंकल, आई एम अ वेरी गुड एक्ट्रेस, आई कैन डू इट वेरी ब्यूटीफुली। और भागती है, जाते ही सात घर में जाती है, अपने सासू माँ को बोलती है अरे माता जी सुबह से आपने नाश्ता नहीं किया, आपको हलवा बहुत अच्छा लगता है ना, गाजर का हलवा अब भी बनाती हूँ। मार्केट जाती है, शुद्ध घी खरीदती है, उसमें हलवा बनाती है खुद गर्मा गरम। माँ को कहते हैं माता जी ये लीजिए, बोला हाँ रख दे ठंडा हो जाएगा। तो ना 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 ना, उसके पहले धीरे से मिलाती है पॉइजन, और खुद अगर नहीं खाई तो खुद अपने हाथ से खिलाती है, माता जी प्लीज आजकल आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, हाँ आप बहुत कमजोर हो गए हो, इसीलिए आपको ज्यादा खाना चाहिए, 2-4 स्पून और मिला के खिलाती है। आधा घंटा होता है, माता जी आपको ऑरेंज जूस चाहिए, एप्पल जूस चाहिए, ठंडा चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए? माता जी सोचती अरे पहले तो आधा घंटा पहले मैं बोलती थी एक ग्लास पानी लेकर आने के लिए तो मेरे को मिलता ही नहीं था, अभी क्या हो गया इसको पता नहीं। बोला नहीं नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। नहीं 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 आपको अपना ना बोन्स वगैरह को अच्छे करने के लिए गर्म दूध, जाकर गर्मा गर्म दूध लेकर आती है, उसमें धीरे से पॉइजन मिलाती है और लेकर आती है सासू माँ को पिलाती है। और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं, और ये डॉक्टर अंकल के पास एक दिन यही जो बहू होती है दौड़ते दौड़ते आती है, रोते रोते अंकल अंकल। तो डॉक्टर अंकल बोलते हैं बाप रे मेरा तो 3 महीने के बाद का प्रोजेक्ट था, वो 3 महीने में ही हो गया क्या, आपकी सासू माँ चली गई क्या? बोला नहीं नहीं अंकल मेरी सासू माँ के बारे में आप ऐसा बातें मत करो। मैंने कहा अरे क्या हो गया? बोला अरे मेरी सासू माँ तो अब मुझे कहती है कि तुम तो मेरी बेटी से भी अच्छी हो, इतना ख्याल करती हो, तुम तो साक्षात सरस्वती हो, वो मेरा काम हाथ बटाती है किचन में और मेरे साथ रहती है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करवाती है, वो तो मेरी माँ से भी अच्छी हो गई है। तो डॉक्टर अंकल कहते हैं अभी मैं क्या करूं? बोला डॉक्टर अंकल अब मैं ना अपनी सासू माँ को मारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है 3 महीने तक मैंने उसको पॉइजन खिलाया है, अब ऐसा कोई दवाई दीजिए जिससे मैं उसको रिवर्स कर सकूं, अब मैं उसको मारना नहीं चाहती हूँ प्लीज। डॉक्टर अंकल बोलते अरे यार ये तो बात बड़ी ठीक नहीं है, एक बार आप पॉइजन मांगते हो दूसरी बार दवाई मांगते हो। तब डॉक्टर अंकल उसको कहता है बेटा चिंता मत करो, मैंने जो आपको दवाई दी थी ना वो पाचन शक्ति को बढ़ाने की दवाई दी थी और कोई भी पॉइजन नहीं दिया था। जो पॉइजन था ना, जो आप जहर चाहते थे ना अपनी सासू मां को खिलाने के लिए, वो पॉइजन आपके मन में था और वो पॉइजन को निकालने के लिए मुझे ये टेक्निक धारण करना पड़ा। जो माता जी आपको 3 महीने पहले हिटलर जैसे नजर आती थी, आज स्वयं अपनी मां से भी ज्यादा प्यारी नजर आ रही है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स चेंज इन माई आउटलुक। वो स्पीड मन के गति को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना, तभी मैं अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव संकल्पों को धारण कर सकता हूं। इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त भी मन की स्पीड को भी और गाड़ी के स्पीड को भी कम करना। दिस इज गोल्डन टिप नंबर 1। गोल्डन टिप नंबर 2 इज कीप सेफ डिस्टेंस। कई लोगों की आदत होती है दूसरे कार के पीछे पीछे जाते, स्कूटर के पीछे पीछे जाते। इसका अर्थ जीवन में भी हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उसके पास मारुति है मेरे पास तो स्कूटर है, उसके पास तो कैल्विनेटर का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर है 250 लीटर का, मेरे पास तो गोदरेज का 165 ही है, उसका बेटा तो 95% स्कोर करता है, मेरा बेटा तो सिर्फ 60% ही स्कोर करता है। हम क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ के साथ दूसरों के लाइफ को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, टेल गेटिंग जिसको कहते हैं। और अगेन मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, हम पीछे 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 जाते, उसने अगर सडन ब्रेक लगाया तो मैं पीछे से जाकर क्या करूंगा, उसको हिट करूंगा। ये इस बात का प्रतीक है, दो बात का, या तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूं या उसके साथ कंपटीशन में हूं। कल डॉक्टर गिरीश पटेल भाई ने कहा था कंपटीशन नहीं करना है, कोऑपरेशन करना है। जीवन में इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है कि मुझे अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं करना है। मैं जो हूं जैसा हूं बहुत 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 अच्छा हूं, श्रेष्ठ हूं। एक बार एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था गर्म धूप में और अपनी किस्मत पर रो रहा था, बोलता हे भगवान क्या मेरी जिंदगी यही है पत्थर तोड़ने की, काश काश बोलता है तो देखता है एक राजा की सवारी जा रही होती है, राजा अपने सवारी अपने रथ पे बैठकर एकदम सिल्क के कपड़ों से लदा हुआ एकदम उसका पैराबॉल छत्र छाया में एकदम मजे से जा रहा है। वो कहता है काश भगवान मैं ये राजा जैसे शक्तिशाली पावरफुल बन जाता, और भगवान उसकी इस भावना से इतना खुश हो जाता है कि तथास्तु कर देता है। और ये पत्थर तोड़ने वाला दूसरे ही क्षण पाता है कि वो कहां बैठा है, राजा की सवारी में, खुद राजा बन गया। वो अपने आप को सोने के हीरे जवाहरातों से लदा हुआ देखकर बहुत खुश होता है और कहता है थैंक गॉड। जैसे ही थैंक गॉड करता है देखता है कि उसके ऊपर उसकी छत्र छाया है रथ के ऊपर, बोलता है ओ गॉड दिस पैराबॉल इज मोर पावरफुल, ये मुझसे शक्तिशाली मेरे से ऊपर है, काश मैं ये पैराबॉल बन जाऊं राजा से भी शक्तिशाली। भगवान कहता है तथास्तु और उसको वो छत्र छाया बना देता है। सूरज की तेज गर्मी वो छत्र छाया के पीठ को झुलसा देती है, वो कहता है ओ गॉड ये सूरज मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है मेरे पीठ को जला रही है, काश मैं सूरज जितना शक्तिशाली बन जाऊं। तथास्तु वो सूरज बन जाता है तेज गर्मी सारी पृथ्वी में, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है बादल छाते हैं सूरज की किरणें धरती को छू नहीं पाती, वो बोलता है ओ गॉड ये बादल मुझसे शक्तिशाली है मेरे किरणों को रोक लेती है, काश मैं बादल जैसे शक्तिशाली बन जाऊं। तथास्तु वो बादल बन जाता है, पानी बाढ़ तूफान आंधी पूरे धरती को हाहाकार मचा दिया है लेकिन एक बड़े से चट्टान को एक इंच भी मूव नहीं कर पाती है, तो बादल बोलता है हे भगवान ये चट्टान मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है मैं इसको हिला भी नहीं पा रहा हूं, काश मैं ये चट्टान बन जाता हूं। तथास्तु वो चट्टान बन जाता है और देखता है एक आदमी आता है एक हथौड़ा और चैनी लेकर टक 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 करके पत्थर को तोड़ता है, बोलता हे भगवान ये मनुष्य मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है मैं ये बनना चाहता हूं। तथास्तु वो पत्थर तोड़ने वाला बन जाता है। वो क्या था, पत्थर तोड़ने वाला ही था, क्या बन गया, पत्थर तोड़ने वाला ही बन गया। मैं कभी भी जो मैं हूं वो एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं इसको देखता हूं ये कैसा है वो कैसा है ये कैसा है, और इन द ड्रिवननेस आई सैक्रिफाइस द कंफर्ट एंड आई मेक माय लाइफ कंफर्टेबली मिजरेबल। बहुत अच्छी तरीके से मैं अपने लाइफ को पानी के अंदर डाल देता हूं। मुझे दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, प्लीज मेंटेन सेफ डिस्टेंस। दिस इज द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन फ्रेंड, या कहते हैं हेलमेट, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। जब हम रोड में चलाते हैं ना तो हेलमेट भले एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकता है लेकिन गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके नुकसान को कम कर देता है, भले सिर पर चोट नहीं लगेगी। हेलमेट पहनना अर्थात आई एम सेफ इनसाइड, इस बात का ये विश्वास कि अगर एक्सीडेंट गलती से भी मेरी गलती सामने वाले की गलती होती भी है तो भी उससे क्या होगा, नुकसान कम हो जाएगा। ये इस बात का अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे मेरे ऊपर ये विश्वास होना बहुत 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 जरूरी है। कहते हैं मदन मोहन मालवीय, आपने नाम सुना होगा इतिहास में, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कहते हैं जब वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी, तो वो हैदराबाद के निजाम के पास गए। उनको पता चला कि हैदराबाद के जो निजाम है उनके पास बहुत सारा धन है, उनके पास गए और कहा, सर मैं ऐसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, ये कहानी नहीं बता रहा हूं, सत्य घटना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा हूं, उसके लिए मुझे इतना इतना धन चाहिए। तो निजाम ने कहा, अच्छा भाई आपको जितना धन चाहिए उतना मैं धन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक कंडीशन है। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, क्या कंडीशन है? उन्होंने कहा, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, मदन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मुझे पसंद नहीं है, जो नाम मैं कहूंगा वही आपको रखना पड़ेगा। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, ये नहीं हो सकता सर, हमने ऑलरेडी बना लिया है नाम, अब कैसे चेंज कर सकते हैं। जब ये बात निजाम ने सुनी, उनको इतना गुस्सा आया, बोला ये तुच्छ व्यक्ति मुझसे कहता है, नहीं हो सकता है। उन्होंने अपना जूता निकाला और मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर फेंका। मदन मोहन मालवीय जी अपने युवराज सिंह की तरह, बहुत अच्छे फील्डर की तरह उसको कैच करते हैं, अपने जो थैला होता है उसके अंदर उनका रॉयल शू रखते हैं, बोलते हैं थैंक यू सर, विथ कंप्लीट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, बहुत अदब के साथ वहां से निकलते हैं, बोलते थैंक यू सर और निकल जाते हैं। वापस बनारस जाते हैं और उस एक लिविंग निजाम का एक रॉयल शू की वो नीलामी करते हैं। और जब ये बात हैदराबाद के निजाम को पता चलता है, ओ माय गॉड, जीते जी मेरा जूता वो तुच्छ व्यक्ति नीलामी कर रहा है, वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं लगना चाहिए, वो क्या करता है अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है, बोलता है कितना भी धन खर्चा होने दो, मुझे मेरा जूता वापस चाहिए। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय गॉट 3 times मोर द अमाउंट व्हाट ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड इन, 3 गुना ज्यादा धन उनको वो नीलामी से प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। उस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को देखें, उस सिचुएशन में अगर मैं अपने प्रोफेसर गिरीश की बात करूं, कोई आप पर जूता फेंके, मुझ पर जूता फेंके, तो मैं एक दो शब्द तो सुना ही दूंगा भाई, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने सर नहीं किया, विथ कंप्लीट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड ही वॉज इन टोटल कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ। एंड वही सच्चा योगी है जो अपने कर्मेंद्रियों पर कंप्लीट वो फर्मनेस, वो डिटर्मिनेशन, आई एम सेफ इनसाइड। इसीलिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सीट बेल्ट, ये कार से है, सीट बेल्ट हम जब बांधते हैं इससे भी एक्सीडेंट कम नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे नुकसान जो है वो कम होने की चांसेस रहते हैं। एटलीस्ट आई विल नॉट गो एंड हिट द यू नो स्टीयरिंग व्हील, उससे क्या होगा, सिर पे चोट कम हो जाती है। इसका मतलब मैं सीट पे बंधा रहूं, मैं अपनी सीट पर सेट हो जाऊं जिससे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सकते। इसका मतलब वो फर्मनेस कि यस मैं कर सकता हूं। कहते हैं द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, पहला व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को उसके शिखर पर पहुंचा, उनका नाम है सर एडमंड हिलरी। हाँ, सर एडमंड हिलरी, अगर आप उनका किताब पढ़े हाई एडवेंचर्स, तो आपको पता चलेगा कि पहली बार जब उन्होंने उस शिखर पर गए ही फेल्ड, उनको अबैंडन करना पड़ा, बीच से आना पड़ा 1952 में। और जब वो वापस आए तो लोगों ने उनके सम्मान में बड़े बड़े समारोह रखे कि भाई ऐसा व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट को छूने का सोच भी सकता हो, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसे ही भरी सभा में उनको निमंत्रण दिया गया, सर आप आइए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, और एक बड़ा सा पोर्ट्रेट ऑफ हिमालय रखा था, और सर को कहा सर प्लीज कम एंड टेक योर सीट ऑन द डायस। और जैसे ही सर एडमंड हिलरी वो डायस पे चढ़े, वो पोर्ट्रेट ऑफ हिमालय को देखा और कहा, ओ हिमालयास, पहली बार तुमने मुझे हराया, पहली बार आपने मुझे हराया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको हराऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको जितना बड़ा होना था सो तो बड़े हो गए, मेरे अंदर का विश्वास और बढ़ता जा रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको हराऊंगा, पहली बार आपने मुझे हराया। 29th May 1953, द वेरी सब्सिक्वेंट ईयर, ही बिकेम द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ टू टच द हाइएस्ट पीक ऑन अर्थ, दैट इज माउंट एवरेस्ट। जब वो वापस आए तो लोगों ने उनसे पूछा, आपके जीवन में वो जब आप ऊपर चढ़ रहे थे आपको क्या समस्याएं आई, क्या आपका सबसे बड़ा चैलेंज था लाइफ का? उन्होंने कहा, इट वॉज नॉट द हेवी लगेज, इट वॉज नॉट द इंक्लेमेंट वेदर, इट वॉज नॉट द फ्रीजिंग टेम्परेचर, इट वॉज नॉट द ग्लेयर ऑफ द स्नो, जब जो आइस होता है ना उसमें सूरज की किरणें पड़ती है तो आंखें चौंधिया जाती, कुछ दिखता नहीं है। इट वॉज नॉट द फर्स्ट बाइट, अलग प्रकार की बीमारियां होती है। द ग्रेटेस्ट चैलेंज, जो सबसे बड़ी परिस्थिति जो मुझे फेस करने करना पड़ा, दैट वॉज टू कन्विंस माई सेल्फ, येस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि यस मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं. और ये मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड कर रहा था कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं. अगर मैं भी इस प्रकार का सीट बेल्ट बांध लूं अपने जीवन के यात्रा में कि कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है, कम वॉट में, कुछ भी हो जाए मुझे किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचना है, सीट बेल्ट बांध के रख लें, कुछ भी हो जाए मुझे रिएक्ट नहीं करना है, तो देखो आपको कोई सीट से सेट करी अलग उठा ही नहीं सकता, आप सेट हो गए हो. मुझे करना है, वो फर्मनेस आना बहुत जरूरी है. इसीलिए कहते हैं या नेक्स्ट स्लाइड, या दिस इज फ्रॉम द इंडियन रेलवेज. कुछ बातें मैंने रोड ट्रांसपोर्ट से लिया है, कुछ मैंने बातें रेलवे से लिया. दिस इज अ न्यू टेक्निक अडॉप्टेड बाय द कोंकण रेलवे, जिसको हम कहते हैं कितने लोग हैं रेलवे से हाथ ऊपर करें, हाँ काफी लोग हैं, आप शायद जान जाएंगे. SST, ये सेल्फ स्टेबलाइजिंग ट्रैक. ये क्या होता है, जब बाढ़ आता है या कुछ होता है तो जो ट्रैक होता है वो जमीन से खिसक जाता है, उसके ऊपर अगर ट्रेन जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. अर्थात वो जो ट्रैक होता है उसको वो एल शेप का एक टेक्नोलॉजी से उन्होंने बनाया, जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिसर्च करके बनाया. किसी भी कंडीशन में वो जो ट्रैक है वो जमीन से अलग नहीं होगा, उसका रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा. इसका आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे अपने रिलेशनशिप में, अपना संबंधों में मधुरता और दिव्यता लेकर आना बहुत जरूरी है. सबसे पहला संबंध है मेरा मेरे साथ संबंध, मुझको अपने आप को जानना पड़ेगा. फिर दूसरा मेरा ईश्वर के साथ संबंध. इन सब संबंधों में जब दिव्यता आएगा तो मेरा लाइफ बहुत ही सुखदायी बन जाएगा. एक बार की बात है, कहते हैं एक डॉक्टर था, पीडियाट्रिशियन था, बच्चों का डॉक्टर था. उनका एक नियम था, वो क्या करते थे, जब भी बच्चों का ऑपरेशन करते थे और ऑपरेशन के बाद जब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कराया जाता था और जब वो वार्ड में ड्यूटी के लिए जाते थे तो वो क्या करते थे, वो जो छोटे बच्चे होते थे उनको अपना स्टेथोस्कोप दे देते थे. और जैसे ही स्टेथोस्कोप देते थे और बच्चे को कहते थे कि आप क्या करो, रिसीविंग एंड यहां रखो, खुद के हार्ट ऑपरेशन जिसका होता है, और अपना दूसरा जो रिसीविंग एंड है उसको हार्ट में रखो और डॉक्टर अंकल को बताओ कि आपको क्या सुनाई दे रहा है. तो बच्चे अलग अलग प्रकार का उत्तर देते, डॉक्टर अंकल मुझे ढक 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 आवाज सुनाई दे रहा है, ये सुनाई दे रहा है, बहुत सारे जवाब देते थे. ऐसे ही एक बार उन्होंने एक बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी किया था और जब ऑपरेशन करने के बाद उन्हें ICU से शिफ्ट होकर वार्ड में लेकर जाते हैं, एज वॉज इज यूजुअल प्रैक्टिस, ये क्या करता है अपना स्टेथोस्कोप ये बहुत छोटे से प्यारे से बच्चे को देते और बच्चे को देखकर बोलते बेटा अपना कान में यहां रखो और अपने दूसरा एंड दिल पे रखो और डॉक्टर अंकल को बताओ आपको क्या सुनाई दे रहा है. और जो वो उत्तर देता है वो बच्चा, वो डॉक्टर का माइंड ब्लोज आउट. ऐसा जवाब आज तक उन्होंने किसी भी दूसरे बच्चे से नहीं सुना था. वो बच्चा कहता है डॉक्टर अंकल मुझे ना ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे दिल के दरवाजे पे नॉक कर रहा हो और पूछ रहा हो बच्चे खुश हो, राजी हो, आराम से हो, मेरी श्रीमत अनुसार चलते हो. जिस प्रकार एक माता पिता को सबसे ज्यादा दुख अपने बच्चों के दुख होने से होता है या माता पिता का सबसे ज्यादा खुशी अपने बच्चों की खुशी में होता है, वैसे ही उस पिता को जिसको भगवान वाहेगुरु अल्लाह गॉड जिस भी नाम से हम पुकार लें, उसको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब हम उसके बच्चे खुश रहते हैं. क्या आज मैं अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ सकता हूं यस गॉड मैं बहुत खुश हूं, मेरा किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं है. वो बात को सुनकर वो ईश्वर परवरदिगार भी इतना खुश होता है, वो खुदा दोस्त इतना खुश हो जाता है कि मेरे बच्चे बहुत खुश है. वो संबंध, इसीलिए कहते हैं वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बाय व्हाट वी गेट आई मेक अ लिविंग, बट वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव. मैं वही लाइफ बनाता हूं जब मैं देता हूं. नेक्स्ट स्लाइड, कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ओके. इसको कहते हैं एंटी कोलिजन डिवाइसेस. ये भी इंडियन रेलवे ने अडॉप्ट किया, जिसमें इंजन में एक ऐसा टेक्निक है, एक बॉक्स रखते हैं, वो GPS के साथ कनेक्टेड होता है. अगर एक ही ट्रैक में अगर दो ट्रेन आ जाएं तो वो ब्लिंक करने लगता है, रेड लाइट जलने लगता है और ड्राइवर क्या करेगा, फुल ब्रेक लगा देगा. इससे हेड ऑन कोलिजन नहीं होता. इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि दो ट्रेन के ड्राइवर के बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है. हमारे लाइफ में भी हमको अपना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, वी हैव टू एनहांस इट, वी हैव टू ब्यूटिफाई इट. इट सो हैपेंड एक गांव में एक वक्ता को बुलाया गया और उनसे कहा गया सर आप इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सुबह 9 बजे मैं आ जाऊंगा। दूसरे दिन वो सुबह आता है, माइक हाथ में लेता है, कहता है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डू यू नो ऑन व्हाट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्पीक टुडे, आपको मालूम है मैं किस विषय पर बात करना चाहता हूं। तो सब गांव वाले कहते हैं जी महाराज हम जानते हैं आप किस विषय पर बात कर रहे हैं। तो ये वक्ता कहता अगर आप जानते हैं तो मेरी क्या जरूरत है बोलने का, टाटा बाय बाय गुड नाइट, और चले जाते हैं। ओ माय गॉड, गांव वाले सोचते हैं कि हमने बता दिया है कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, इसके कारण उनको लगता है कि इस वक्ता को ठेस पहुंचा है। वो दूसरे दिन वापस जाते हैं और वक्ता से कहते हैं महाराज गलती हो गई, अब कल हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, आप कल आएंगे क्या? द ओरेटर से यार टुमारो नेक्स्ट मॉर्निंग 9 o'clock आई विल बी देयर शार। दूसरे दिन आता है, माइक हाथ में लेता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स डू यू नो ऑन व्हाट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्पीक टुडे। सब गांव वाले कहते हैं नहीं महाराज हम नहीं जानते। वक्ता कहता है अगर आप इतना भी नहीं जानते कि किस विषय में मैं बात कर रहा हूं, टाटा बाय बाय गुड नाइट, वापस फिर चला जाता है। ओ माई गॉड, इट क्रिएट्स अनदर लेवल ऑफ कंफ्यूजन। अब गांव वाले समझ नहीं पाते कि हम क्या गलती करें। फिर महाराज के पास जाते, बोलते महाराज गलती हो गई, कल हम दोबारा नहीं करेंगे गलती। बोला ओके फाइन, टुमारो नेक्स्ट मॉर्निंग 9 o'clock आई विल बी देयर। थर्ड डे आता है, माइक लेता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स डू यू नो ऑन व्हाट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्पीक टुडे। 50% ऑफ द क्राउड सेज यस सर, रिमेनिंग 50% ऑफ द क्राउड सेज नो सर। अब वक्ता फंस गया। तो वक्ता कहता है जिन 50% लोगों ने कहा वो जानते हैं किस विषय में मैं बात करना चाहता हूं, प्लीज आप बता दीजिए दूसरे 50% लोगों को कि किस विषय में मैं बात कर रहा हूं, टाटा बाय बाय गुड नाइट, और वापस चला जाता है। ओ माई गॉड, दैट इज हाइट ऑफ कंफ्यूजन। अब ये गांव वाले समझ नहीं पाते कि ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है, बट उनको ये भी पता चल जाता है कि हर दिन आ रहा है दूसरे दिन सुबह 9 बजे। वो अपने गांव के हेडमैन के पास जाते, बोलते सर हमारे पास ऐसे एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, कैन यू हेल्प अस आउट। तो वो जो विलेज वाइसमैन होता है, हेडमैन होता है, वो कहता है डू दिस। और वो वापस गांव वाले उसके पास जाते, बोलते सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आप कल वापस आइए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको ईगो को हर्ट नहीं करेंगे। बोले या नो प्रॉब्लम, टुमारो 9 o'clock शार्प आई विल बी देयर। फोर्थ डे ही कम्स एज वाज हिज यूजुअल प्रैक्टिस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स डू यू नो व्हाट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्पीक टुडे। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस, एस आई एल ई एन टी, उसको आप रीजम्बल करो एल आई एस टी ई एन। वी हियर थ्रू आर ईयर बट वी लिसन थ्रू आर माइंड। हम कानों से भल, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन यथार्थ सुनना वो दिल का सुनना वो मन से होता है। जितना मैं मन के चैटरिंग को कम कर सकता हूं उतना मैं दूसरों की बातों को सुन सकता हूं। नेक्स्ट स्लाइड, इसीलिए हमारे कम्युनिकेशन को नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट या लास्ट, ये एक लास्ट टिप है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं द बेस्ट गोल्डन सेफ्टी टिप इज टू मेक गॉड योर कंपेनियन। अगर मुझे पता चल जाए मेरा सिखाने वाला भगवान बैठा है, मेरे साथी भगवान है, तो मुझे किसी भी सिचुएशन में नुकसान होने का कोई भी चांस नहीं है। इन सब गोल्डन टिप्स को मुझे धारण करना। नेक्स्ट लाइफ, ओके, इसीलिए कहते हैं वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। हम ये समझते हैं कि हम मनुष्य हैं आध्यात्मिक यात्रा में, उस ओरिएंटेशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा। रादर वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। बाय डिफॉल्ट मैं आत्मा आध्यात्मिक हूं और इस शरीर के द्वारा ये सुंदर सुनहरा जीवन रूपी यात्रा पर अग्रसर हूं, जिसको मुझे सुखदायी बनाना है। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट सेफ्टी, सेफ्टी को अगर मैं धारण करूंगा तो सेफ्टी विल लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू, ओम शांति।